सच्चा मकदस योहन्ना की इंजील दूसरा बाब आयत 13 से 22 तक। फसा की ईद करीब आ गई। ये एक बहुत अहम ईद थी। इस ईद पर यहूदी क्या मनाते थे? ये कि खुदा ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। उस वक्त खुदा ने फरमाया था कि इसराइली एक लेले का खून दरवाजे के चौखटों पर लगाएं। जिसने ऐसा किया उसके सब घर वाले जिंदा रहे, जिसने ऐसा ना किया उसका पहलौठा मर गया। रात के वक्त मिस्रियों में बड़ा हल्ला मच गया, क्योंकि जेल के कैदी से लेकर फराउन तक उनके तमाम पहलौठे मर गए थे। तब मिस्र का बादशाह इसराइलियों को छोड़ने पर मजबूर हुआ। एक लेले के खून ने उन्हें खुदा के गजब से बचाया। एक लेला नजात का बायस बन गया। ये लेला सिर्फ यरूशलम के मकदस में ज़बह किया जा सकता था। इस मौके पर ईसा मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलम पहुंच गया। जाने का क्या मकसद था? वो वहां क्या सिखाना चाहता था? जब वो बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो क्या देखते हैं? बैरूनी सहन में बड़ी मंडी लगी हुई है। उसमें लातादाद गाय बैल भेड़ें और कबूतर बिक रहे हैं। एक तरफ मेजों की कतार लगी हुई है। वहां सर्राफ बैठे आम सिक्के खास सिक्कों में बदल रहे हैं। मामूल के सिक्के मना थे, इसलिए जो आता था उसे अपने सिक्के इन खास सिक्कों में बदलना था। हर तरफ डकारते गाय बैल, मिमियाती भेड़ बकरियां, गूं गूं करते कबूतर, मोल तोल में लगे सौदागरों की चीख पुकार। ये कुछ देखते ही ईसा मसीह आपे से बाहर हुआ। वो रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब पर टूट पड़ा। उसने भेड़ों और गाय बैलों को बाहर हांक दिया, पैसे बदलने वालों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजें उलट दी। कबूतर बेचने वालों को उसने कहा, इसे ले जाओ, मेरे बाप के घर को मंडी में मत बदलो। इस जगह पर हम पहला सबक सीखते हैं, ये कि मकदस एक पाक मकाम है। मकदस एक पाक मकाम है। ईसा मसीह इतने गुस्से क्यों हुआ? बैतुल मुकद्दस वो मुकद्दस जगह था जहां इंसान खुदा के हजूर आकर उसकी परस्तिश कर सकता था। उस खुदा की जो न सिर्फ अजीम है बल्कि जो पाक भी है, जिसके सामने गुनाहगार इंसान कायम नहीं रह सकता। उसे मंडी में बदलना सख्त गुनाह था। इस दुनिया में हर तरफ दीनी मंडियां लगी रहती हैं, जहां लोग पूजा और परस्तिश करते हैं वहां पैसे कमाना आसान है। जो आम बाजार में पैसा गिन गिन कर सौदा मोल लेता है वो दीन के मामलों में अंधाधुंध देता है। अंधाधुंध क्यों देता है? जाहिर है, कौन अपने देवता या खुदा को नाराज करना चाहता है? इस बिना पर मजहब को पेशा बना दिया गया है। दूसरी बात, मकदस खुदा के हजूर आने का मकाम है। मकदस खुदा के हजूर आने का मकाम है। इस जगह पर ईसा मसीह ने ना बैतुल मुकद्दस कहा ना मकदस। उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरे बाप का घर। क्या खुदा बैतुल मुकद्दस में बसता था? नहीं, जिसने सब कुछ खलक किया वो ना बैतुल मुकद्दस ना किसी और जगह रहता है। मगर ये घर उसका निशान था, वो मकाम जिससे जाहिर होता था कि वो अपनी कौम के साथ है, जहां उसके इमाम उसे कुर्बानियां पेश करते थे। इसलिए ईमानदार बड़ी ईदों पर जहां मुमकिन था वहां आया करते थे। हम कह चुके हैं कि मकदस एक पाक मकाम है, और ये भी कि मकदस खुदा के हजूर आने का मकाम है। अब एक तीसरी बात सामने आई है, ये कि मकदस बाप का मकाम है। मकदस खुदा बाप का मकाम है। मेरे बाप का घर। मेरे बाप कहकर वो क्या कहना चाहता है? मेरा खुदा बाप से खास रिश्ता है, फर्जंद का पाक रिश्ता। यही वजह है कि वो इतने गुस्से हुआ। बाप का घर मेरा घर भी है, और इसी को तुमने मंडी में बदल डाला है। परस्तिश और दुआ की जगह मोल तोल की मंडी बन गई है। खुदा इसका मरकज नहीं रहा, उसकी तौहीन हो रही है। चौथी बात, मसीह सच्ची परस्तिश कायम करेगा। मसीह सच्ची परस्तिश कायम करेगा। नबी बार बार इस तौहीन का जिक्र कर चुके थे। यूं यर्मिया नबी ने फरमाया था, क्या तुम्हारे नज़दीक ये मकान जिस पर मेरे ही नाम का ठप्पा लगा है डाकुओं का अड्डा बन गया है? खबरदार, ये सब कुछ मुझे भी नजर आता है। यर्मिया की किताब 7:11। नबियों ने इससे बढ़कर साफ बताया था कि इंसान अपनी कोशिशों से सच्ची परस्तिश कर ही नहीं सकता। इसलिए एक वक्त आएगा जब खुदा खुद अलमसीह के जरिए ये सच्ची परस्तिश कायम करेगा। यूं ज़करिया नबी सदियों पहले पेशगोई करता है कि उस वक्त सौदाबाजी खत्म हो जाएगी। वो फरमाता है, उस दिन से रबुल अफवाज के घर में कोई भी सौदागर पाया नहीं जाएगा। ज़करिया की किताब 14:21। यसाया नबी ने भी इस मसीहाना ज़माने की पेशगोई की थी। उसने फरमाया, मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। यसाया की किताब 56:7। गर्ज, ईसा मसीह अपने अमल और कलाम से जाहिर कर रहा है कि वो अलमसीह है जो सच्ची परस्तिश का ये ज़माना शुरू करने आया है। मैं दोहराता हूँ, पहले मक़दस एक पाक मकाम है, दूसरे मक़दस खुदा के हजूर आने का मकाम है, तीसरे मक़दस खुदा बाप का मकाम है, और चौथी बात, मसीह सच्ची परस्तिश कायम करेगा। दूसरे लोग ये तमाशा देख रहे थे, वो ये देख कर क्या करते हैं? वो पूछते हैं, आप हमें क्या इलाही निशान दिखा सकते हैं ताकि हमें यकीन आए कि आपको ये करने का इख्तियार है? क्या आपने कुछ महसूस किया? उन्होंने सोचा तक नहीं कि ये काम गलत है। वो समझते हैं कि जो ज्यादा ताकत दिखाए वही हक में है। क्या वो कलाम से वाकिफ नहीं थे? क्या उनको नहीं पता था कि मंडी का ये इंतजाम गलत है? जरूर वो पाक निविष्टों से वाकिफ थे, लेकिन इस दुनिया में कौन पूछता है कि क्या गलत और क्या सही है? हर एक अपने नफा और फायदे के पीछे लगा रहता है। ऐसे लोग किसी की बात सिर्फ इस सूरत में मानते हैं कि वो उनसे ज्यादा जबरदस्त हो, इसीलिए वो इख्तियार का सवाल छेड़ते हैं। कहते हैं कि कोई इलाही निशान दिखाओ जिससे पता चले कि तुम ज्यादा ताकतवर और जबरदस्त हो। एक पांचवी बात, इंसान मक़दस को पाक नहीं रख सकता। इंसान मक़दस को पाक नहीं रख सकता। ईसा मसीह क्या जवाब देता है? क्या वो कोई शानदार मोजज़ा दिखाता है? नहीं, वो एक पहेली पेश करता है। वो फरमाता है, इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन के अंदर दोबारा तामीर कर दूंगा। पूछने वाले चौंक उठे। वो बोले, बैतुल मुकद्दस को तामीर करने में 46 साल लग गए थे और आप इसे 3 दिन में तामीर करना चाहते हैं? बैतुल मुकद्दस इतनी मेहनत से तैयार हो गया है और अब भी तामीर का काम जारी है, ये किस तरह हो सकता है कि आप उसे 3 दिन में तामीर कर सकें? लेकिन ईसा मसीह कुछ और कहना चाहता है। पहले, इंसान मक़दस का ये इंतज़ाम पाक रखने में फेल है, ये इस मंडी से जाहिर हो रहा है, इसलिए जल्द ही एक वक्त आएगा जब उसे ढा दिया जाएगा। और वाकई कुछ सालों बाद ऐसा ही हुआ। रोमियो ने इस शानदार मकाम का सत्यानाश किया। इससे खुदा जाहिर करेगा कि इंसान उसे पाक नहीं रख सकता। इंसान अपनी कोशिशों से खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए ये दुनियावी मक़दस काफी नहीं है। लेकिन यहूदी एक और मक़दस भी ढा देंगे, المسیح کو جو خدا تک کا سچا راستہ ہے، وہ اسے رد کر کے صلیب پر چڑھائیں گے۔ میں دہراتا ہوں، پہلے مقدس ایک پاک مقام ہے، دوسرے مقدس خدا کے حضور آنے کا مقام ہے، تیسرے مقدس خدا باپ کا مقام ہے، چوتھے مسیح سچی پرستش قائم کرے گا، اور ایک پانچویں بات، انسان مقدس کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک آخری بات، مسیح ہی سچا مقدس اور لیلا ہے، مسیح ہی سچا مقدس اور لیلا ہے۔ یہ دوسرا مقدس قبر میں نہیں رہے گا بلکہ جی اٹھے گا، اور یہ الہی مقدس انسان کا اپنے ساتھ رشتہ قائم کرے گا۔ جس کام میں انسان خود فیل تھا، اسے وہ خود سر انجام دے گا۔ وہی جو سچا مقدس ہے، جو قربانی کا سچا لیلا ہے، جو ہماری خاطر موا اور جی اٹھا، جس سے ہمیں اپنے گناہوں سے نجات ملی ہے۔ بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا اور آج تک نئی سرے سے تعمیر نہیں ہوا، لیکن مسیح جی اٹھا۔ وہ ایک پاک اور ابدی مقدس ہے، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے حضور آ سکتے ہیں، جس سے ہم اس کے فرزند بن سکتے ہیں، اور یہ مقدس کسی مقام پر محدود نہیں رہتا۔ ہم ہر جگہ اس مقدس کے ذریعے خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہر جگہ ہم خدا کی پاک پرستش کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا مقدس ہے؟ خدا تک پہنچنے کا آپ کا کیا پاک راستہ ہے؟ کیا آپ دنیا کی کسی دینی منڈی میں الجھے ہوئے ہیں، یا مسیح آپ کا سچا مقدس ہے؟ یوحنا کی انجیل دوسرا باب آیت 13-22 تک۔ جب یہودی عید فصح قریب آ گئے تو عیسیٰ یروشلم چلا گیا۔ بیت المقدس میں جا کر اس نے دیکھا کہ کئی لوگ اس میں گائے بیل، بھیڑیں اور کبوتر بیچ رہے ہیں۔ دوسرے میز پر بیٹھے غیر ملکی سکے بیت المقدس کے سکوں میں بدل رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس نے بھیڑوں اور گائے بیلوں کو باہر ہانک دیا، پیسے بدلنے والوں کے سکے بکھیر دیے اور ان کی میزیں الٹ دیں۔ کبوتر بیچنے والوں کو اس نے کہا، اسے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو منڈی میں مت بدلو۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ کے شاگردوں کو کلام مقدس کا یہ حوالہ یاد آیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہودیوں نے جواب میں پوچھا، آپ ہمیں کیا الہی نشان دکھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ آپ کو یہ کرنے کا اختیار ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، بیت المقدس کو تعمیر کرنے میں 46 سال لگ گئے تھے اور آپ اسے 3 دن میں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جب عیسیٰ نے اس مقدس کے الفاظ استعمال کیے تو اس کا مطلب اس کا اپنا بدن تھا۔ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگردوں کو اس کی یہ بات یاد آئی۔ پھر وہ کلام مقدس اور ان باتوں پر ایمان لائے جو عیسیٰ نے کی تھیں۔